हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचमो अध्याय श्लोक संख्या 36। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारु बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति वेदेसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देना। कृपया नारद मुनि के मुखारविंद से निकले हुए इन अमृतमय शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। नारद कह रहे हैं, कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। शब्दकार कुर्वाणा यत्र कर्माणि, कुर्वाणा मतलब करते हुए, यत्र जहाँ कर्माणि कर्तव्य, यानी कि जीव जो अपने कर्तव्य करता है। भगवत शिक्षया सकृत, भगवत यानी भगवान की शिक्षया यानी इच्छा से, सकृत यानी निरंतर, जो भी कार्य जीव कर रहा है वो भगवान की इच्छा से करे। गृणन्ति, गृणन्ति मतलब ग्रहण करता है। गुण नामानि, गुण नामानि मतलब नाम, कृष्णस्य कृष्ण के, अनुस्मरन्ति निरंतर स्मरण करते हैं, च तथा। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनको, उनके नामों तथा उनके गुणों को स्मरण करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से मनुष्य जीवन को किस तरह से गुजारना है उसके विषय में बताएंगे कि क्या करना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का सक्षम भक्त अपने जीवन को इस प्रकार से ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए, वह निरंतर भगवान के नाम यश गुणों आदि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के अतिरिक्त हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा वृत्ति में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता कृष्ण को अर्पित करें। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। क्योंकि भगवान अपने नाम, यश आदि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश आदि से संबंधित होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। हमारी आर्थिक आय कम से कम 50% भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का संदेश उनके भक्तों में उपदिष्ट हो। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा आदि की लेई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होता रहना चाहिए। इस प्रसंग में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण द्वारा दिव्य संदेश के प्रचार का पाठ सिखाया है। इस प्रकार हम अपनी आय का 50% इस कार्य के लिए खर्च कर सकते हैं। इस कलह तथा मतभेद प्रधान पतित युग में यदि समाज के अग्रणी तथा धनिक व्यक्ति अपनी अपनी आय का 50% भगवान की सेवा में व्यय करें, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, तो यह कुव्यवस्था रूपी नरक भगवान के दिव्य धाम का रूप धारण कर सकता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि जहाँ अच्छा गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण हो रहा हो, उसमें सम्मिलित न हुआ जाए। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त है कि ये सारे कार्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हों, जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सब काम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेषतया भगवद गीता में तथा सामान्यता अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें उन्हें यथा रूप में ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्ध पथ प्राप्त हो सकता है। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति यानी पथ में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, विनीत भाव से श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम् प्रथम स्कंद पंचमोध्याय। नारद द्वारा वेदव्यास को श्रीमद्भागवतम का उपदेश देना। आज नारद मुनि वेदव्यास को अत्यंत ही उत्तम उपदेश दे रहे हैं कि जीवन एक मनुष्य का जीवन किस तरह से ढाला जाना चाहिए, किस तरह से उसके मनुष्य जीवन को सार्थक किया जाए। हर कोई जीव अपने अपने अनुसार, मति अनुसार अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करता है। कोई एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं, कोई एक्टिंग में, कोई और कोई, हर कोई अपना अपना एक फील्ड चुनता है और क्या सोचता है मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, और लगा देता है अपने पूरी आयु को, अपनी पूरी संपत्ति को उस गोल को प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या करना है, भगवान नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में हमें बताया जाता है कि जो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है ना, वो क्या करने के लिए मिला है, कैसे अपने कर्मों को करो और कैसे तुम अपने इस जीवन को मुक्त प्रसिद्ध कर सकते, परफेक्ट कैसे, सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। ऐसा लगता है कभी कभी कि श्रीमद् भागवतम 5,000 साल पहले नहीं आया, ऐसा लगता है आज की बात है। किसी को पता ही नहीं है कैसे जीना है, किसी ने लगता है पढ़ा नहीं है। सिर्फ अगर देखा जाए तो जीव इस तरह से नहीं जी रहे हैं जैसा कि शास्त्र कह रहा है। इसीलिए जितनी भी तकलीफें हैं, जितना भी प्रॉब्लम्स इस संसार में जो भी क्रिएट हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि क्योंकि जीव शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहा है। तो देखते हैं नारद में क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है। पर उससे पहले मन में एक सवाल आता है कि नारद मुनि ने कह दिया वेदव्यास जी को, वेदव्यास उनके शिष्य थे, हम क्यों माने नारद मुनि की बात, नारद मुनि की बात क्यों माने। उसके लिए शास्त्र कहता है, इस संसार में भगवान को ठीक ठीक जानने वाले केवल 12 लोग हैं, जिन्हें 12 महाजन कहा जाता है। केवल वे ही भगवान को जानते हैं। और ये किसने बताया, स्वयं यमराज जी बताते हैं कि देखो, यमराज अपने दूतों को कहते हैं कि अगर इन 12 महाजनों के वाक्य के अनुसार कोई जीवन गुजारता है तो उसको दंड नहीं देना, शास्त्र ऐसा कहता। तो यदि हमें यमराज के दूतों से के दंड से बचना है तो इन 12 महाजनों के बताए हुए पंथ को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसे शास्त्र कहते हैं, महाजनों ये न गता सुपंथा, जो पंथ महाजनों ने बताया है उसी के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है। तो पहले जान लेते कि वो 12 महाजन कौन है। भागवत कहता है, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यास ग्रह वयम्। स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू यानी जो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, जिनके कोई माता पिता नहीं है, वो फ्लावर से, लोटस फ्लावर से उत्पन्न हुए। कौन है वो? ब्रह्मा जी। और उसके बाद नारद, स्वयंभू नारद शंभु, पहले महाजन है ब्रह्मा जी, उसके बाद नारद मुनि, उसके बाद शिव जी, शंभु वैष्णवानाम यथा शंभु, उसके बाद कुमार, चार कुमार, उसके बाद कपिल मुनि और मनु, उसके बाद प्रहलाद, फिर जनक, भीष्म पितामह, बलि, वेद व्यास जी और यम, यमराज। ये 12 महाजन हैं। इनके बताए हुए अनुसार यदि हम जीवन को व्यतीत करते हैं तो ही हमारा जीवन सही दिशा में जा रहा है। तो फिर ये इनमें से जो नारद मुनि है वो आज हमें बता रहे हैं कि कैसे जीवन गुजारना है। तो यदि हमें यम के दंड से बचना है तो हमें नारद जी की इस बात को मानना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं? कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत, यानी कि जीव को जब तक इस संसार में है तो उसको कर्म करना पड़ेगा, है ना। कर्म करने से कोई नहीं बच सकता। भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षण मति जातु तिष्ठत अकर्म कृत, कोई एक क्षण के लिए भी कर्म करने से बच नहीं सकता। तो कंटिन्यूस कर्म करना है। कैसे करना है? भगवत शिक्षया सकृत, भगवान की शिक्षा के अनुसार, जैसे भगवान ने आदेश दिया है उसके अनुसार आपको कर्म करना है। जीव के जीवन का लक्ष्य ये है कि वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करे, पहले शास्त्र के अनुसार, जैसे भगवान ने भगवद गीता में बताया, उसके अनुसार आपको कर्म करना। अब कभी ऐसा मन में आता है कि अभी हम लोगों को तो भागवत गीता पढ़नी भी नहीं आती है, पता नहीं भगवान ने क्या कहा, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, सब अपने अपने मति के अनुसार बताते हैं, तो फिर हम कैसे समझें? देखो, ये कोई ऐसी बात नहीं कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम करना ही छोड़ दें, अपनी मर्जी से करें। भगवान ने साफ साफ कहा, यह शास्त्र वर्तते काम कारणम न सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परम गतिम, कि जो शास्त्र की विधि अनुसार कार्य नहीं करता है और अपने मन माने ढंग से कार्य करता है, उसको ना तो कभी सिद्धि प्राप्त होगी, ना कभी सुख प्राप्त होगा और ना ही कभी परम गति प्राप्त होगी। ये मनुष्य जीवन है। हम कोई कुत्ते नहीं है, कोई सुअर नहीं है कि हम जानना नहीं चाहते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको किस तरह से जीवन गुजारना है, या नहीं पता तो बस नहीं पता, अपनी मर्जी से कर लें। इसके लिए हमें खोज करनी पड़ेगी, ऐसे शुद्ध भक्त की खोज करनी पड़ेगी जो कि, जिस अभी हम लोगों ने तात्पर्य में जिसके विषय में पढ़ा, शुद्ध भक्त का मतलब क्या है? रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ऐसा भक्त जिसके हृदय में कोई इच्छा ना हो, लौकिक इच्छा होती है ना भौतिक वस्तुओं की, हाँ सब लोग आएंगे, मुझे सुनेंगे, मुझे सम्मान देंगे, मेरा मान होगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये सब इच्छाओं से बिल्कुल दूर होता है और सकाम कर्म नहीं करता कि मैं ये कार्य करूंगा तो उसके बदले में मुझे ये प्राप्त होगा, ये सब नहीं करता है। वो क्या करता है? केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं? वो प्रचार करता है तो इसलिए नहीं करता कि लोग उसको, है ना, रेस्पेक्ट देंगे, उसका आदर करेंगे, उसके लिए बड़े बड़े व्यास आसन बनाएंगे, उसको पगड़ियां पहनाएंगे, या फिर वो आएगा तो फिर उसके जूते को सर पे रखेंगे, या फिर कुछ इस तरह नहीं। उसके मन में क्या होता है? मैं प्रचार करूंगा तो जीवों का कल्याण होगा, तभी ये संसार में सारे, ये प्रचार तो भगवान का सबसे बड़ा आदेश है। यहाँ पर जो अभी हमें बताया कि अपने जीवन को कैसे गुजारना है, भगवत इच्छा, भगवत शिक्षा से सकृत, जैसे भगवान की इच्छा है, तो भगवान ने जो बताया कि मेरी इच्छा क्या है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि मेरी इच्छा क्या है कि मेरे आदेश को, मेरे इस श्रीमद् भगवद गीता को एक एक व्यक्ति के पास जाना है। महाप्रभु कहते हैं जारी देखो तारी कहो कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरी इच्छा है कि तुम जिसे भी देखो उसे कृष्ण के विषय में बताओ। तो यदि कोई भक्त किसी को भगवान के विषय में बता रहा है तो अपना सम्मान कराने के लिए नहीं बता रहा है, बल्कि क्यों बता रहा है, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। और कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया 18.69 में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, के इस संसार में उससे बड़ा मेरा कोई दूसरा सेवक और प्यारा ना कोई, ना तो कोई है और ना ही कोई भविष्य में होगा। तो सबसे बड़ा आदेश भगवान का है कि मेरे नाम का प्रचार करो, मेरी भगवत गीता में जो मैंने उपदेश दिया उसका प्रचार करो। तो भगवान के आदेश अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और शुद्ध भक्त कौन है, जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इसलिए हमें ऐसे शुद्ध भक्त की संगति में रहकर भगवान के आदेश को समझना है कि भगवान आखिर हमारे जीवन, क्योंकि अब नारद मुनि ने कह दिया कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत, कि आपको सारे काम किस तरह से करने हैं, जैसे भगवान ने शिक्षा दी है, भगवान के आदेशों अनुसार आपको कार्य करने हैं और इसी से आपका जीवन सफल होगा। और अगर भगवान के आदेशों अनुसार जीवन को बिताता है तो कंटिन्यूस से भगवान याद रहते हैं। गृणन्ति गुणनामानि कृष्णं स्यानुस्मरन्ति च, आपके जीवन का सबसे बड़ा लाभ ये है, हर मनुष्य हर समय कुछ न कुछ स्मरण कर रहा होता है। ये स्मरण शक्ति, ये जो सोच, ये जो याद करने की ना, आप हर वक्त कुछ न कुछ आपको याद आ रहा होता है। जब कभी कोई मूवी देखी होगी उसका सीन याद होगा, किसी फ्रेंड से मिले होगे उसका, किसी ने आपको कुछ बोला होगा उसको याद कर रहे होगे, क्या कुछ आपने सुबह को क्या खाया उसको याद, कल क्या बनाना है उसको याद, हर वक्त कुछ ना कुछ स्मरण करता रहता है। तो ये स्मरण जो है वही जीवन का लक्ष्य है। सब लोग बोलते हैं स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, यहाँ पर बता रहे नारद जी कृष्ण स्यानुस्मरण, अनुस्मरण करना चाहिए। कृष्ण का खाली स्मरण नहीं करना चाहिए, स्मरण का मतलब होता है सुष्ठु रूपे न कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। उसके अतिरिक्त आप कुछ भी याद करो, अभी भगवान न करे कोई हम किसी भी वस्तु कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु को स्मरण कर रहे हैं और इत्तफाक से वो समय हमारे जीवन का आखिरी समय हो तो है ना, मृत्यु कोई बता के थोड़ी ना आएगी कि अभी ऐसा करो आप भगवान का स्मरण शुरू कर दो मैं आने वाली हूँ, बताएगी दोस्त है आपकी, नहीं ना, खुद ही आ जाएगी। तो यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे हैं कि यदि आपको अपने इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, यदि इस जीवन का सत्यानाश नहीं करना है, यदि इस जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है तो क्या करना है, गृणन्ति गुण नामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च, कंटिन्यूस आपको कृष्ण का स्मरण करना है, ये आपके जीवन का लाभ है। अगर आपने कृष्ण का स्मरण नहीं किया और उस समय आपको मृत्यु हो गई तो मृत्यु तो बता के नहीं आएगी, तो फिर समझो आपने जो भी किया जीवन में वो सब आपका जाया तो एक तरह से नहीं होगा, लेकिन दूसरा जीवन जो है वो आपको उसी के अनुसार मिलने वाला है जो कि आपने, अब देखो महाराज भरत ने बहुत भक्ति की थी, भक्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन स्मरण गलत हो गया, हिरण का हो गया तो उसको हिरण बनना पड़ा, भले वो भगत थे, भले उसे याद रहे भगवान बोले नहीं थे उसके बाद जड़ भरत का जन्म, लेकिन इतने एक जन्म में मुश्किल से हम भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं जो कि मनुष्य का जन्म है और एकदम परफेक्ट है ना, मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली एकदम परफेक्ट है, भगवान सामने हैं, गुरु और ये श्रीमद् भगवद गीता भागवतम के अध्याय और श्लोक हमको रोजाना सुनने को मिलते हैं, भक्तों का संग मिल रहा है, इसमें ही भक्ति करना मुश्किल लग रहा है, फिर भगवान न करे अगर अंत समय में कुछ और स्मरण हो गया और उसके कारण कोई जानवर का जन्म मिल गया, कुत्ता बिल्ली हिरण कुछ बन गए और उसकी बदली उसके बाद भले ही याद रहेगा, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 2.40 में कि नहीं नेहा विक्रमणाशुस्ति स्व प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि यदि आपने भगवान की भक्ति के लिए थोड़ा सा भी कार्य किया तो कभी समाप्त नहीं होगा उसका कोई भी पुण्य, लेकिन फिर भी समाप्त नहीं होगा, भले जरा सा होगा वो आपके लिए महाबल से रक्षा करेगा, लेकिन फिर भी यदि अंत समय में भगवान याद नहीं आए तो पूरा लाभ नहीं हुआ जीवन का, क्योंकि शास्त्र कहता है मनुष्य जन्म का लाभ है अंते नारायण स्मृति, कि अगर अंत में आपको भगवान याद आ गए तो समझो आपका जन्म मनुष्य जन्म सक्सेस हो गया, अगर नहीं आए तो समझो फेल हो गए इस एग्जाम में, तो समझो अब सप्ली देना पड़ेगा, अब क्लियर नहीं हुए सारे पेपर तो फिर सप्ली में तो और भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है एनी हाउ इसी जीवन में सफल होना है। यहाँ पर मन में एक प्रश्न उठता है हम गृहस्थियों के एटलीस्ट कि अगर हम कंटिन्यूस भगवान का स्मरण करेंगे तो फिर हम अपने अदर जितनी भी हमारी ड्यूटीज हैं वो कैसे करेंगे, है ना, दूसरे भी तो हमारे कार्य होते हैं, कोई टीचर है, कोई पिता है, कोई माता है और कोई पति है, कोई पत्नी है, तो हर एक को अपने अपने कार्य करने होते हैं, अपने अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं और जो कार्य हम करते हैं उसमें हमें तन्मय होना पड़ता है। अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो वो सही तरह से नहीं कर पाएंगे, ना ऐसा लगता है। इसका उत्तर अत्यंत ही सुंदर है, श्रीमद् भागवतम 5.5.18 में बताया गया कि आप कुछ भी हो, आपका स्टेज चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि आप भगवान को स्मरण नहीं कर रहे हो, अपने आश्रित को भगवान के विषय में नहीं बता रहे हो, फिर चाहे उसको कितना ही सुख दे रहे हो, कितना ही आनंद दे रहे हो, कितनी ही नॉलेज दे रहे हो, आप उसके हितैषी नहीं हो सकते। कैसे कहते हैं, गुरु न सस्यात स्वजनों न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात दैवम न तत्स्यान न पतिस्थ सस्यान गुरु न सस्यात, वो गुरु गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, स्वजन मतलब वो मित्र मित्र कहलाने के योग्य नहीं है, पिता न सस्यात, आप कहते हो मैं पिता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चों के लिए कमाना होता है, बच्चों के लिए ये सारे सामान लेकर आने होते हैं, कभी बैग, कभी ट्यूशन फीस, कभी स्कूल फीस, कभी है ना शूज, कभी ये वो, कभी उनको घुमाना पड़ता है, लेकिन शास्त्र को कहता है आप पिता कहलाने के योग्य नहीं हो। जननी न सस्यात, माता की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, टाइम पर खाली बच्चों को स्कूल भी भेज दे, स्कूल के फीस उसको पे करे और फिर है ना जो घर में आए तो बच्चे तो उसको खाना तैयार करके भेजे, ये नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ शास्त्र बताता है दैवम न सस्यात न पतिश्च सस्यात, न आप पति कहलाने के योग्य हो, न आप देव कहलाने के योग्य हो, न मोचयेत यह समुपेत्य मृत्यु, अगर आप अपने आश्रित को भगवान की शरणागति के विषय में नहीं बता रहे हो, अगर आप जैसे गुरु हो अपने शिष्य को, मित्र हो तो अपने मित्र को, पिता हो तो अपने पुत्र को, जननी हो तो अपनी संतान को, पति हो तो अपनी पत्नी को, यदि आप ये नहीं बता रहे हो कि आपके जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण भक्ति है, भगवान की भक्ति यदि आप अपने जीवन में नहीं करोगे तो भले आपको कितना ही सुख इस संसार में प्राप्त हो जाए, आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, यदि ये शिक्षा नहीं दे रहे हो तो आप वो कहलाने के योग्य नहीं हो, आप वो पोस्ट के योग्य ही नहीं हो। तो हम चाहे किसी भी पोस्ट पर हैं, हमारा मेन कर्तव्य क्या है, कृष्ण को सेंटर में रखना। हम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही भोगता हूँ चाहे जो भी हो, यज्ञ हो तपस्या उसका भोग। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने अच्छा बताया, बहुत बहुत ही सुंदर बात है कि अगर कोई देवी देवताओं के भी यज्ञ करते हैं, भले इंद्र हो, ब्रह्मा हो, सरस्वती हो, क्योंकि वास्तव में उन सबके प्रभु तो कृष्ण है, तो कृष्ण के लिए एक अलग से स्थान होना चाहिए। है ना, वो विशिष्ट देवता की पूजा भले कर रहे हो लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति अनिवार्य है, होती है, जिससे वास्तव में आपका कल्याण होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, भले देवताओं का अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वास्तव में देवता भी भगवान के सेवक हैं, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी भोक्ता नहीं है, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो। और श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बताया कि आपको अपनी कमाई का 50% जो है वो भगवान की सेवा में देना है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, 50% इट इज टू मच, है ना, हम भगवान को क्यों दे दें, भगवान की कुछ लोग बोलते हैं हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, है ना, और भी भगवान के मंदिर में देने से क्या फायदा है, भगवान को कोई जरूरत है क्या हमारे पैसों की, हमें तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, किसी को कपड़े लेकर जाने चाहिए, किसी को दवाइयां लेकर देनी चाहिए, किसी को, है ना, न्याणी को शादी करानी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। ये भगवान के मंदिर में देना कुछ समझ में नहीं आता लोग को। वास्तव में क्या है, श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया है कि ठीक है तुम्हें गरीबों की मदद करनी है ना तो करो, लेकिन पहले ये तो समझो कि गरीब क्या है, क्या ये जो शरीर उसका दिख रहा है क्या वो है वास्तव में, या ये तो शरीर तो वस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 2.22 में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। तो या तो जो दिख रहा है गरीब जैसा वो तो उसका वस्त्र है, वस्त्र को कब तक संभाल के रखोगे, अगर कितना भी खिलाओगे कितना भी उसको पोषण दोगे कुछ भी करोगे मर जाएगा, लेकिन मर के फिर उसका क्या होगा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसने जीवन में भक्ति की तो सबसे पहली बात भगवान बताते हैं, अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि कृष्ण अगर हम भक्ति पूरी तरह से नहीं कर सकते और फिर मृत्यु आ जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास साधन इतने अच्छे नहीं होंगे, भक्ति कंप्लीट नहीं कर सकी तो मृत्यु आ जाएंगे तो क्या होगा, क्या नष्ट हो जाएंगे बादल की तरह, जैसे बादल नष्ट हो जाता है हवा के आने से। तो भगवान कहते हैं नहीं मेरे दोस्त, जो एक बार भगवान की भक्ति स्टार्ट कर लेता है, जो एक बार इस रास्ते पर आ जाता है उसका बुरा कभी नहीं होता। भगवान कहते हैं श्रीमान शुचिमताम गे है योगो भ्रष्टो भी जायते। अगर भक्ति पूरी नहीं भी कर ली तो भी इतनी तो गारंटी है कि तुमको गरीब नहीं बनना पड़ेगा दोबारा, दोबारा ऐसे साधन मिलेंगे कि तुम अच्छी से भक्ति कर सकोगे, अमीर बनोगे, ताकि क्योंकि अमीर लोग होंगे ना तो फिर उसको टेंशन नहीं रहेगी कमाने की खाने की, इतनी टेंशन नहीं रहेगी, खुद ही हो रहा होता है सारा काम, मासियां कर रही होती हैं और आप आराम से बैठकर गोपीनाथ की सेवा कर सकते हो तो टेंशन नहीं होगी। अगर आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई तो भी आपको अच्छा जन्म मिलेगा, फिर आपको अंधा काणा लुला लंगड़ा बदसूरत या फिर इस तरह का जन्म नहीं मिलेगा। श्रीमान शुचिमताम गे है योगो भ्रष्टो भी जायत, आपको ऐसे घर में मिलेगा जन्म जहाँ पर। तो वास्तविक अगर किसी का भला है तो यही है कि ये ना के ना प्रकार है आप सिर्फ भगवान के साथ छोड़ दो। श्री प्रभुपाद ने बोला कि फिर ऐसा करना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए जहाँ पर संगीत हो, महामंत्र का बहुत धमाकेदार कीर्तन हो, वहाँ पर बहुत अच्छी फीस्ट हो, बहुत ज़्यादा प्रसाद हो, भगवान के लिए नाचा जाए, भगवान के दर्शन हो, भगवान की कथाएँ हो, भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन हो, मंदिरों में ऐसे बड़े बड़े मंदिर हो विशाल जिसमें सब लोग आए मिलके भगवान की भक्ति करें, लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी। अब मंदिर में कोई दान देगा तभी तो मंदिर बड़े होंगे, तभी तो मंदिर में हम लोग है ना महाप्रसादम वगैरह की सहूलत ये सब प्रोवाइड करेंगे लोगों को। तो इस तरह से अगर मंदिर बढ़ रहे हैं, अगर प्रचार बढ़ रहा है, अगर संकीर्तन बढ़ रहा है तो समझो सबका भला हो रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो। वास्तव में सबसे बड़ा दुख जीव को ये नहीं है कि उसका शरीर अस्वस्थ है, सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसको गरीब घर में जन्म मिला है, सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसको कोई फिजिकली या मेंटली कोई टेंशन है, सबसे बड़ा दुख जीव का ये है कि उसे भगवान से अलग कर दिया गया, भगवान के साथ जो उसका संबंध है उसको तोड़ दिया गया। और यदि सबसे बड़ा कोई उपकार है जीव के साथ, अगर कोई आप उपकार कर सकते हो तो उसे फिर से मिला दो उसके अपने कृष्ण के साथ, उसकी सारी टेंशन सारी जितनी भी उसकी मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स है ना, वो सब इसी से सॉल्व हो जाएंगी अगर जीव अपने वास्तविक प्रेमी कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। तो ये इस आदेश को पूरा करने के लिए हमें जीवन में गुजारना, जीवन अपना व्यतीत करना है। और श्री प्रभुपाद ने एक और भी अच्छी बात बताई, हाँ व्यव्या ये कमाई का 50% हम लोग बोल रहे थे कि भगवान की सेवा में देना, तो कोई सोच सकता है कि 50% भगवान को क्यों दिया जाए, है ना? भगवान को इसलिए दिया जाए क्योंकि आपके पास जो कुछ है वो भगवान का ही है, वास्तव में 50% नहीं है, 100%। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी तो कहते थे कि आपको 100% ही, एक बार ही क्या हुआ, श्री प्रभुपाद के एक भक्त थे, मतलब वो इतना टाइम तक आए नहीं मंदिर में, तो बोला श्री प्रभुपाद ने क्यों आप इतने दिन से नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु अभी फैमिली बढ़ गई है और मुझे डबल ड्यूटी करनी पड़ती है, पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है, बच्चों की स्टडीज हैं और वो, तो मुझे ज़्यादा है ना कमाना पड़ता है, तो अब मैं फंस गया हूँ बहुत, जिसके कारण मैं नहीं आ सकता। श्री प्रभुपाद ने बोला फिर आप 50% ना भगवान के लिए दान देते हो, तो उसने बोला 50%, तो बोला हाँ आप जो भी कर रहे हो उसका 50% तो भगवान के लिए होना चाहिए ना, अगर आप नहीं दे रहे हो तो समझो आप भगवान के साथ बेईमानी कर रहे हो। तो वो इतना हैरान हो गया कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो वास्तव में क्या है कि आपके पास जो भी बुद्धि है, आपका जो भी शरीर है जो कार्य कर रहा है, वो किसके कारण कर रहा है, या तो आप बुद्धि से कार्य कर रहे हो जैसे कमाते हो तो, या शरीर से कर रहे हो, वो किसका है, भगवान का दिया, भगवान की संपत्ति है। इसका मतलब है हम जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं वो भगवान की संपत्ति के कारण कर रहे हैं, है ना? तो हम भगवान की संपत्ति को यूज कर रहे हैं परंतु उसमें भगवान को नहीं दे रहे हैं उसका हिस्सा, तो समझो हम चोर हैं, फिर हम सही काम नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए अच्छा बताए क्या, अगर हम कभी एक दिन सोचें, ऐसा बता रहे थे एक स्वामी जी में लेक्चर में सुन रही थी, कि हम पूरे दिन में जितना कुछ भी खर्च करते हैं ना अपने ऊपर, वो भगवान का दिया हुआ जो भी हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, जैसे वायु और सूर्य प्रकाश और जो अनाज संसार हम लोग खाते हैं, भले अनाज हम सोचते हैं हम अपने पैसों से लेकर आए हैं, लेकिन वो किसके कारण है, क्योंकि भगवान कहते हैं अन्नाद भवति पर्जन्यो पर्जन्यात अन्न संभव, कि जीव किस पर निर्भर है, अनाज पर, और अनाज किससे होती है, पर्जन्यो, ये बारिश से होती है, बारिश से ही अनाज संभव है, और बारिश की कौन करता है, बारिश भगवान करते हैं, है ना, ये भगवान का डिपार्टमेंट है, देवताओं को दिया हुआ है, वो उनके कारण हो रहा है। तो अगर हम लोग अनाज खा रहे हैं तो किसकी, हमारे शरीर को ये पुष्टि मिल रही है तो किसकी वजह से मिल रही है, भगवान की वजह से। और सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो अनाज डाइजेस्ट कर रहे हैं, आजकल ये फैशन निकला हुआ है कि हर कोई अपने लिए अलग अलग जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज है ना, वो जैसे अगर किसी का हाथ टूटा होता है तो नकली हाथ लगा देते हैं, किसी का पेट टूटा होता है तो नकली पेट लगाते हैं, अगर किसी की आंखें खराब हो जाती हैं तो फिर वो लेंसेस लगा देते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाए, है ना, किसी का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाए तो फिर किसी ने बोला कि हम वो सिस्टम ही चेंज करके लगा देंगे, अभी भगवान की ज़्यादा नीड नहीं है, सारे काम है ना ये मॉडर्न साइंस कर लेती है। तो मॉडर्न साइंस ने जब इसके लिए कार्य करना शुरू किया तो पता चला कि एक दिन का अनाज जितना आप डाइजेस्ट करते हो ना, जैसे आपने खाया और वो जुबान से आने के बाद पेट में जैसे डाइजेस्ट होता है और फिर स्टूल बन के निकल जाता है और जो बाकी जो है वो शरीर में ब्लड के रूप में बनता है, इसको करने में इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है जितना कि एक मनुष्य पूरे हफ्ते में काम करता है ना, पूरा हफ्ता अगर एक मनुष्य काम करे ना, उसकी उस में भी उसको इतनी मेहनत नहीं लगती जितना एक दिन का खाना हजम करने में, डाइजेस्ट करने में लगता है। तो और फिर बोला ठीक है, अगर इतनी भी मेहनत लगती है तो क्या हुआ, एक है ना फैक्ट्री लगा देंगे, एक है ना एक मशीन अंदर लगा देंगे। बोला एक मशीन से काम नहीं होगा, इसमें इतनी क्रिया चलती है कि इसके लिए तो पूरी फैक्ट्री, एक फैक्ट्री नहीं पूरी एक फैक्ट्री की लाइन लगानी पड़ेगी, तकरीबन एक दर्जन फैक्ट्रीज इसके अंदर लगानी पड़ेंगी। उसमें पहले खाना इधर जाएगा, फिर ब्लड्स को भेजेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, उसके बाद है ना फिर कहीं जाकर एक पूरी फैक्ट्री की चेन यहाँ पर लगेगी, फिर कहीं जाकर आपका खाना हजम होगा। और भगवान क्या कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचान अन्नम चतुर्विधम, कि मैं वैश्वानर अग्नि हूँ जो आपके पेट में बैठकर चार प्रकार के अन्न को पकाता हूँ। तो ये सारा काम हमारे शरीर में कौन कर रहा है, एक अगर कोई बीमार हो जाता है एक दिन तक अगर उसको ऑक्सीजन लगता है ना तो कितने सारे पैसे खर्च करते हैं। तो इसी तरह से जो वस्तुएं हम भगवान की यूज करते हैं एक दिन में, अगर उसका बिल एक दिन अगर वो पूरी सारी वस्तुएं हम सोचे कि भगवान से हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अब अपनी मॉडर्न साइंस ने तो सारी चीजें है ना इन्वेंट कर ली हैं तो उसको यूज करेंगे, तो एक दिन में कम से कम अगर कम से कम भी करें तो 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो इतना सारा हम भगवान का यूज कर रहे हैं और हम कहते हैं हम अपनी कमाई का भगवान को कैसे दे दें, भगवान को दान कैसे कर दे इतना सारा। वास्तव में भक्तों हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो कृष्ण का ही है, कृष्ण को ही लौटाना है। वैसे तो क्या है, ब्रह्मचर्य और सन्यास इन दोनों वर्णों में क्या है, सारा का सारा गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दे देना है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा छूट है, क्योंकि गृहस्थ में क्या होता है, आपको आपके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां भी होती हैं, अतिथि की जिम्मेदारी होती है गृहस्थ की, कि हमारे घर पे जो अतिथि आता है उसको भी हमें है ना देना होता है, भोजन वगैरह कराना होता है, और अपने बच्चों को अपने माता पिता को। इसलिए 50% कहा श्रील प्रभुपाद ने कि 50% जो है ना वो हमें दान में देना होता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने अंत में अत्यंत ही सुंदर बात बताई है कि वास्तव में जीव को क्या करना चाहिए, मनुष्य जन्म लेकर एक प्रामाणिक शुद्ध भक्त के पास जाना चाहिए, जिससे जिसकी योग्यताएं अभी हमने पढ़ी कि उसके अंदर कोई मोह नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो, कोई है ना वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला हो, ऐसी योग्यताओं वाले किसी विनीत भाव भक्त के पास हमें जाना चाहिए और विनम्रता से श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करना चाहिए। क्यों भगवद गीता और भागवतम, क्योंकि उन्हीं से हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन को भगवान ने किस प्रकार से गुजारने के लिए कहा है, वरना तो वही हम लोग, क्या फर्क हो जाएगा हम में और उन जानवरों में जो कि विदाउट ट्रेनर शास्त्रों के अपना जीवन गुजारते हैं। अगर हम भी अपने शास्त्रों को पढ़कर अपने भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन नहीं गुजार रहे हैं तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, फिर वो तो वही कार्य करेंगे ना आहार निद्रा भय मैथुन जैसा पशु लोग करते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताया कि फिर हमें श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करना चाहिए और इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे जीवन में हमें ये करना है, अपने खुद को सीखना है श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, और अपने संतान को अपने प्यारों को सबको ये बताना है कि जब तक आप इन आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करोगे तब तक आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्ण।